नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। नागर विमानन महानिदेशालय ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बुधवार को जारी बयान के अनुसार नियामक ने एक एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जाँच की। इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया था। डीजीसीए ने कहा कि चूंकि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर अनुपालन का पता चला, इसके बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सुरक्षा रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए विमानों से संबंधित है। डीजीसीए ने बयान में कहा, चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का परिचालन नियामक प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, इसीलिए डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी को नहीं लगता है कि नए लाभकारी स्वामित्व खुलासा नियमों से बड़ी संख्या में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रभावित होंगे। ये मानदंड 1 फरवरी से लागू होने वाले हैं। ऐसे में शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मंगलवार को बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती लाभ को गंवाकर 1000 अंक से अधिक टूट गया। सूत्रों ने कहा कि जिन एफपीआई को खुलासा प्रदान करने की जरूरत हो सकती है, हालांकि ये खुलासा परिचर्चा पत्र में सेबी के बोर्ड के अक्टूबर 2023 के नोट की तुलना में काफी कम रहने का अनुमान है। एक सूत्र ने बुधवार को पीटीआई भाषा को बताया, बढ़े हुए खुलासा नियमों से छूट उन एफपीआई को प्रदान की गई है जो एसडब्ल्यूएफ, कुछ वैश्विक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कंपनियां, सार्वजनिक खुदरा कोष और विविध वैश्विक होल्डिंग्स वाले अन्य विनियमित पूल किए गए निवेश साधन हैं। हाल ही के कारोबारी सत्रों में एफपीआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। पिछले साल कारोबारी सत्रों में एफपीआई ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं। हालांकि इससे पहले उनकी लिवाली की मदद से स्थानीय सूचकांक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचे थे। सोर्सेज ने बताया, बिना किसी पहचान वाले प्रवर्तक वाली कंपनियों में केंद्रित एफपीआई होल्डिंग्स में एमपीएस मानदंडों के उल्लंघन का कोई जोखिम नहीं है। चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी रियलमी ने अपनी स्थापना के केवल 5 साल के अंदर 2023 में भारत में 10 करोड़ स्मार्टफोन बेचने का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी के उपाध्यक्ष चेस शू ने कहा कि ब्रांड इस साल अपनी बिक्री को और बढ़ाने के लिए कामकाज, फोटोग्राफी और डिज़ाइन को उत्कृष्ट बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। ये स्मार्टफोन की अपनी 3 श्रृंखलाओं के साथ विविध बाजार खंड में है। सी श्रृंखला किफ़ायती मूल्य पर गुणवत्ता, डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। संख्या श्रृंखला उन्नत फोटोग्राफी विकल्पों के साथ मध्य श्रेणी खंड को लक्षित करती है और जीटी श्रृंखला अधिक उन्नत तकनीक पर ध्यान देने के साथ अत्याधुनिक खंड में स्थित है। चेस ने यहां बातचीत के दौरान कहा कि उत्पाद सुधार के अलावा कंपनी ब्रांडिंग बेहतर करने पर भी ध्यान देगी। इसका लक्ष्य विशेष रूप से युवा उपभोक्ताओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने वाला एक तकनीकी ब्रांड बनना है। उत्पाद नवाचार और ब्रांडिंग उन्नयन की ये दोहरी रणनीति कंपनी को भारतीय बाजार में प्रासंगिक बने रहने में मदद करेगी। चेस ने 2024 की रणनीति पर कहा कि रियलमी नवाचार के लिए 30 प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ सहयोग करना और अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश करना चाहता है। उन्होंने कहा, हम अनुसंधान एवं विकास में 470% की उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे। ये हमारी तकनीकी क्षमताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये भारत के बाजार में मध्य उच्च श्रेणी खंड में जाने की हमारी महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। रियलमी का मुख्यालय चीन के शेंजेन शहर में है। कंपनी ने ग्राहकों का रुख जानने और समन्वय करने के लिए पिछले साल भारत में एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र खोला था। चेस ने कहा, भारत में हमारी नज़र कुछ रोमांचक भविष्य पर है, इसीलिए हमने एक अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित किया है। ये केंद्र सिर्फ गैजेट और उपकरण नहीं बना रहा है, बल्कि व्यापक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है। इससे भारत में रोजगार के 13,000 अवसर पैदा हुए। ये मेक इन इंडिया के समर्थन में और स्थानीयकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि 5G उत्पादों के लिए लोगों के बीच बढ़ती पसंद को स्वीकार करते हुए रियलमी भारत में 5G तकनीक का लोकतंत्रीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।